Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो महावन्दाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हा देवी काकु भरगतगत यास्तवाचा जाते विपत्तको विदंडवतमुल भटारते अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनान्विधे अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मंदी कृतेन्दीवरं जड्डं जागदरोति संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां शरणं तिष्ठ
गोपाल भट्ट गोस्वामी और रामचंद्र कविराज
तीनों का आपने भाव याद की वो भाव की थी कल की और शायद कल नरहरि प्रभु याद भाव तिरो भाव अभी हम लोग उनके संबंध में कुछ चरित्र पर विचार करेंगे अपराधिक चरित्र जिसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पाए उनके संबंध में नपे तुले और सार शब्दों में आप लोग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बोलिए कुछ लोग बोलेंगे पहले गोपाल भट्ट जी के कुछ लोग बोलेंगे जयदेव जी के संबंध कविराज हैं
जयदेव गोस्वामी छिला खाली गोपाल भट्ट गोस्वामी रामचंद्र कविराज
जयदेव जी का भी कब था
आज
पर आज नहीं आज ही तो
আমি
মরে যাওয়ার কথা চিন্তা হ্যাঁ
कहाँ आज के तो कोई कुछ कह ही नहीं। जयदेव जी गोस्वामी के मैंने
मायापुर
आछे तब गोपाल भट्ट जी का रामचंद्र जी का ये चला गया कल पर 22 जयदेव जी का आज हो सकता है गोपाल भट्ट जी के संबंध में सुन रहे हैं। जैसे कि पूर्व वक्ता ने बतलाया दक्षिण देश में श्रीरंगम में भारतवर्ष का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, उसमें 7 प्रकोष्ठ हैं और 7ों में 7 नगरी बसी हुई, और ये मंदिर विभीषण के द्वारा प्रतिष्ठित है, उससे भी पहले का है। वहीं पर विभीषण एक बार आ रहे थे तो उनके रथ के चक्के से एक आदमी की मृत्यु हो गई या घायल हो गए, बस उन्होंने विभीषण को वहीं पर पकड़ रखा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पकड़ रखा, फिर उन्होंने भगवान राम को पुकारा तो रामचंद्र जी जाकर के बोले जैसे ये मेरे सेवक की जो त्रुटि हुई है ये मेरी त्रुटि है, इसलिए आप भक्त लोग हमें क्षमा करें या दंड दें तो मुझे दें, ये हमारा आश्रित है इसलिए आप लोग इसको छोड़ दें, अथवा दंड देना आप तो इसको छोड़ करके हमें दंड दें। सब लोग रामचंद्र जी के वचनों से मुग्ध हो गए और उनको छोड़ दिया। तब से विभीषण प्रतिदिन वहाँ के दर्शन के लिए आते जाते, इसलिए ये सतयुग से त्रेता युग से ही ये मंदिर प्रसिद्ध है। पीछे से रामानुज जी इत्यादि ने इसको बहुत बड़ा विशाल बनाया और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। यहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद में जा रहे थे, दक्षिण देश में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय में ये रामानंद जी से मिलने के बाद दक्षिण में और नीचे गए और वहीं पर महाप्रभु जी से इनकी भेंट हुई। उस समय आषाढ़ का महीना था,
चतुर्मास,
आषाढ़ मास अभी आरंभ होने वाला था, तो ये मंदिर में दर्शन कर रहे थे। इनके रूप गुण और विद्वता को देख करके ये तीनों भाई जो भक्त थे, ये लक्ष्मी नारायण के उपासक, उन्होंने भिक्षा के लिए निमंत्रण किया अपने घर और बोले जैसे सन्यासी लोग तो 4 महीने इधर उधर जाते नहीं हैं, इसलिए आप 4 महीने हमारे घर में रह करके भिक्षा लेंगे और श्रीरंगम जी का दर्शन करेंगे और हरि कथा यहाँ होती है, आप सुनेंगे सुना। महाप्रभु जी ने कहा जे ओम अस्तु, ऐसा ही हो। इसने महाप्रभु उन्हीं के घर में रह गए और वहीं से रोज श्रीरंगम का दर्शन करने आते। वहाँ पर जहाँ महाप्रभु रहते हैं हरि कथा होगी ही, तो ये लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक, उनसे इन्होंने महाप्रभु जी ने पूछा एक ऐसे ही हरि कथा के माध्यम से। लक्ष्मी जी बड़ी पतिव्रता हैं और नारायण की अर्धांगिनी और बड़ी पतिव्रता है, तो वो क्यों छोड़ करके नारायण को और कृष्ण की सेवा करने जाती हैं, तो उनका पतिव्रत धर्म रहा कहाँ? तो उन्होंने कहा जी कहाँ ऐसा लिखा, उन्होंने कहा जी कस्यानुभावो अश्वन देव विद्मे तवांग रेणो स्पर्शाधिकार श्री लल्ला आचार्य तपो विहाय कामान नारायण सेवान। विहाय माने कामान, माने क्या? नारायण की सेवा को प्रत्याग करके और ये कृष्ण की सेवा करने के लिए तपस्या करती हैं, किंतु पाया नहीं। विहाय कामान छोड़ करके भीतव्रता बहुत दिनों तक तपस्या का आचरण किया, किंतु यही नहीं लिखा जैसे उनको मिली गए, मिली नहीं कृष्ण। तो फिर उनका पातिव्रत धर्म रहा था। उन्होंने श्रीमद्भागवत के श्लोक को देख करके कहा ठीक है, तब वो महाप्रभु जी के प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं दे सके। तो महाप्रभु जी ने कहा कि कृष्ण और श्री श्री कृष्ण स्वरूप
सिद्धांत
अभेदे अपि श्री कृष्ण स्वरूप
रसेन
उत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रस स्थिति। रस की स्थिति ऐसी ही है जे कृष्ण और श्री माने लक्ष्मी जी के पति नारायण कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। राम कृष्ण नृसिंह वामन नारायण ये सब कोई अलग तत्व नहीं, एक कृष्ण ही तत्व के ये विभिन्न प्रकाश है। कृष्ण को ही उपासना के तारतम्य से विभिन्न रूपों में हम इसको दर्शन करते हैं। इसलिए यदि लक्ष्मी जी कृष्ण नारायण को छोड़ करके यदि कृष्ण के प्रति लुप्त हो गई हैं तो उनका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। ये कृष्ण की विशेष चार माधुरियों का ये विशेष महात्मा है कि लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी से भी ऊपर और जो जितना देवियां हैं या उनसे नीचे नलिन गंध रुचो कुतो अन्य, अर्थात भगवान के जितने अवतार देवलोक में हुए हैं उनकी भी पत्नियां गंधर्वों की, सब लोग मुग्ध हो जाते हैं, ये कोई दोष नहीं है। ये कृष्ण की रूप की रस की यही स्थिति है। इस तरह से चार महीने में उनका एकदम भाव बदल गया। जो प्रबोधानंद सरस्वती जी बचपन का ही उनका नाम और विद्वान होने के नाते उनको विद्वानों ने सरस्वती की उपाधि दी थी। कविता में तो ऐसे पारंगत जैसे जयदेव जी हैं ना, ऐसे अनुप्रास अलंकार सब समय खेलते रहते हैं उनकी कविताओं में। कृष्ण भी उनको सुनने के लिए ललकते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती जी, वो प्रबोधानंद सरस्वती जी त्रिमल्ल भट्ट और वेंकट भट्ट तीनों और उनके भ्रातुष पुत्र या उनके वैकुंठ भट्ट के पुत्र, ये एकदम सभी लोग उनके वशीभूत होकर के और कृष्ण प्रेम में दीक्षित हुए और भी गोपी भाव से दीक्षित हुए उनके प्रति ऐसी भावना। बचपन से ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को लिखाया पढ़ाया व्याकरण इत्यादि जितने तत्व की बातें हैं और उपासना अर्चन मार्ग विधि मार्ग और जितने प्रमाण प्रमेय सब हैं सबको प्रबोधानंद सरस्वती जी ने इनको शिक्षा दी और पारंगत कराया। जब ये बदल गए, जब कृष्ण भक्ति में वो सब लोग आ गए तो वहाँ के जितने सब ग्रंथों के बड़े विद्वान ये थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी प्रबोधानंद सरस्वती से शिक्षित हुए, वो सब अपने चीज़ों को लेकर के महाप्रभु जब वहाँ से चले आए तो उनके पिताजी के अप्रकट होने पर प्रबोधानंद सरस्वती जी चले आए वृंदावन में। वो भी धीरे धीरे सबको छोड़ छाड़ करके चले आए। चलते चलते रास्ते में भ्रमण करते हुए गोमती के किनारे कभी गंगोत्री जमुनोत्री और जहाँ गोमती निकली है वहाँ और सब बड़े बड़े भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थों में जिए गए। जब गोमती जहाँ से निकलती हैं वहाँ पर गए, गोमती का ही दूसरा नाम सरजू है शायद या गंडकी है,
गंडकी
गोमती या गोमती नदी। तो वहाँ पर जहाँ से वो निकलती हैं वहाँ पर सालग्राम उनसे प्रकट होते हैं नदी में, छोटे छोटे सालग्राम का चिन्ह होगा जो कष्टी पाथर होगा एकदम कृष्ण पत्थर चमकता हुआ और उसमें कीड़ों के खाए हुए होने से चक्र का उसमें चिन्ह बनता है, किसी में एक किसी में दो किसी में सात किसी में आठ और विभिन्न तरह के होते हैं उनके साइज, साइजों के अनुसार में और रंग के अनुसार में
उनके नाम दामोदर शिला, नृसिंह शिला, कृष्ण शिला, नारायण शिला, कितने तरह के
सब अवतार शिला,
सब अवतारों की शिलाएं वहां पर होती हैं। किसी किसी में जिसमें कि चिन्ह होता है उसमें स्वर्ण अपने आप भरा रहता है, ये उनका प्रधान लक्षण है। चिन्ह रहेगा चक्र का, जिसमें तीन चक्र होते हैं, बहुत ही सुंदर। और वो यदि थोड़ा सा गोलाकार होता हुआ, झुकता हुआ, काला रंग का हो, दामोदर शिला सबसे सुंदर माना जाता है अभिषेक की, अपने अभिलाषा की पूर्ति के लिए। उसी प्रकार से जितने प्रकार के हैं उसके लक्षण चिन्ह हरिभक्ति विलास में ये सब दिया गया है। ये दिया कौन? यही अनुसंधान करके हरिभक्ति विलास के मूल प्रणेता जो हैं ये गोपाल भट्ट जी हैं। उन्होंने छोटे रूप में उसको संग्रह किया और सनातन गोस्वामी जी ने इसको और बड़ा किया और प्रमाण ये इत्यादि सब ढूंढ करके और उसकी टीका भी लिख दी सनातन गोस्वामी ने। कहा इनको संग्रह करने के, इन्होंने संग्रह किए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया सब ठीक ठाक, तो उन्होंने उसके अनुसार क्रम के अनुसार में उसको सब सजाया, उसकी टीका लिखी, उसको बृहद बनाया, प्रमाणिक बनाया और टीका कर दिया। इसलिए हरिभक्ति विलास में दोनों का नाम आता है, गोपाल भट्ट जी का और
सनातन गोस्वामी
गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी इतने उदार हृदय के, थोड़ा सा उन्होंने संग्रह किया था और बाकी काम किया स्वयं, किंतु ग्रंथ का प्रणेता के रूप में उन्हीं का नाम दिया। हम लोगों जैसे क्षुद्र स्वभाव के नहीं थे, बड़े उदार थे। हम अपने से छोटे व्यक्ति के कोई ग्रंथ के ऊपर में टीका लिखेंगे ऐसा नहीं होगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके छोटे भाई या पुत्र के रूप में थे और उनसे पुस्तक लिखा करके उस पर टीका लिखना उनके शान के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध था, किंतु यह भी काम हमने किया। तो गोपाल भट्ट जी वहां जब गए गोमती के किनारे तो वहां पर एक बड़ी सुंदर शिला उनकी, करीब इतनी बड़ी, 12 इंच से भी छोटी, 10 इंच की होगी, बड़ी सुंदर शिला, लंबी सी शिला, बस हृदय में लगा दिया। और समस्त तीर्थों में घूमते घूमते जब अंत हो करके जब वृंदावन में आए तब रूप सनातन से मिले और वहीं पास ही में उस स्थान पर जहाँ आज राधा रमण जी हैं, वन जंगल था, वहाँ पर उनको स्थान दिया। वो रह करके भजन करते थे और अपने शालग्राम की सेवा करते थे। एक दिन उनके अंदर में भावना उठी कि सभी लोग अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उनको श्रृंगार करते हैं और उनको झूले पर झुलाते हैं, हम भी ठाकुर जी को ऐसा ही करते। किंतु देखा जैसे उनके तो हाथ हैं नहीं पैर हैं, तो वैसे किंतु उनको पूर्ण विश्वास है ये यही कृष्ण है, यही राधा रमण है, उसी भावना से सेवा करते। शालग्राम शिला में और गिरिराज की शिला में और गोमती की शिला आती है द्वारकाधीश की, द्वारका से, इन तीनों में किसी की सेवा की जा सकती है। तब शालग्राम में और गिरिराज में देखा जाता है कि राधा कृष्ण दोनों की उपासना अधिक रूप में लोग करते हैं और गोमती वाले में नारायण की या द्वारकाधीश की सेवा होती है। तो ये सेवा रात में इनको स्वप्न हुआ, तुम्हारे अंदर में हमारी सेवा करने की अभिलाषा, अभी देखो तो उठ करके अपने सिंहासन में दर्शन करो मेरा। जब कपड़े उठाया देखा जो सुंदर मदन मोहन गोविंद जी और गोपीनाथ तीनों की मूर्तियां एक साथ में मिली हुई, जिसमें गोपीनाथ का मुखारविंद था, पस्तक्षल गोविंद का और मदन मोहन जी का पैरों पर पैर रखे हुए,
गोविंद के मुखारविंद,
गोविंद जी का मुखारविंद,
गोपीनाथ के वक्षस्थ
पस्तक्षल,
मदन मोहन के पाद पद्म,
तीनों एक साथ उनको इधर से पीठ की तरफ से देखने से शिला गिरिराज सिंह की शालग्राम शिला और इधर से एक तरफ से देखने से गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन यही राधा रमण जी प्रकट हुए। आनंद का ठिकाना नहीं रहा, सब दूर दराज से लोग सब दर्शन करने आए, तब से इनकी प्रसिद्धि।
सब उनको दूध इत्यादि से अभिषेक किया गया जो अभी तक चलता है। गोपाल भट्ट जी वहीं पर रहे। कुछ दिनों के बाद में वहां पर श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य जी वहां पर आए। उस समय में नरोत्तम ठाकुर जी को जीव गोस्वामी ने निर्देश किया उनके पास में,
कौन
लोकनाथ दास गोस्वामी के यहाँ दीक्षित होने के लिए, और श्रीनिवास जी को गोपाल भट्ट जी को किसको कहा, गोपाल भट्ट से उन्होंने दीक्षा ली। श्रीनिवास आचार्य ने उनसे जाकर के दीक्षा लिया, और जी गोस्वामी ने सबको समस्त शास्त्र पढ़ाया, भक्ति स्वामी सिंधु से लेकर के रूप गोस्वामी और हरि हमारे सनातन गोस्वामी और गोस्वामी के समस्त ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन कराया, और तब फिर उनको समस्त पुस्तकों के साथ में बंगाल के जाते। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति, भगवान के भक्त जी, उनके सालग्राम से राधा रमण जी निकले, और उनकी बहुत सी पुस्तकें तो उतनी नहीं है किंतु हरिभक्ति विलास और बहुत से स्तोत्र उनके हैं।
सत्क्रिया
सार दीपिका,
षट संदर्भ कारिका,
अच्छा और है गोपाल भट्ट जी की कुछ टीकाएं भी हैं, वो बिल्ल मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत का शायद उनकी टीका भी। तो ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी परम विद्वान व्यक्ति थे और रूप सनातन जी के कृपा पात्र थे। महाप्रभु जी ने निर्देश दिया था जब वृंदावन में जाना तो यहीं पर रहना। आज उस दिन कृष्ण रामचंद्र कबीराय और किसका
आज ये जयदेव था बोलते
हैं, आज तो जयदेव है,
काल के नरहरि सेवा विग्रह कृति रहब गए से तो
अभी देखा था। रामचंद्र कबीराज जी ये बहुत ही सुंदर और मृदुभाषी थे। 16-17 वर्ष की उम्र में जब इनकी शादी होने जा रही थी और शादी करके लौट रहे थे वर के रूप में, और इनकी पत्नी पालकी में बैठी थी, ये भी पालकी में जा रहे थे, तो श्रीनिवास आचार्य जी के जहाँ पर भजन करते थे वहीं से ये होकर के गुजर रहे थे रास्ते से। तो श्रीनिवास जी ने टॉन्टिंग किया, कोई भी ऐसा मूर्ख व्यक्ति होता है या कोई विद्वान ऐसा हो सकता है बुद्धिमान जे पैसे से काल को खरीद करके, नागिन को, विषैली नागिन को खरीद करके ले आ जाए, पैसे से खरीद करके और ले आ करके और उसी के द्वारा मारा जाए, ऐसा कहीं होता है?
जैसे आग में पतंग कीड़े लाभ देखो मरता है, ऐसे मरने के लिए जा रहा है,
इसलिए ये अपने को समझ रहा होगा कि मैं आज आनंद मैंने सबसे बड़े सुख को भोगने के लिए आज जा रहा हूँ, आज हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, सुंदर लड़की के साथ मेरी शादी हुई, आज हमारा जीवन बन गया, और ये जैसे पतंगे आग में कूद करके अपने प्राण को देने जा रहे हैं, ऐसे आज ये आग में जलने के लिए ये जा रहा है और इसको भान नहीं है कोई। बस उन्होंने सुना और सुन करके डोली रोकती, कहा जी इसको ले जाओ घर, और मैं अब घर नहीं जाऊंगा। बस श्रीनिवास जी के चरणों में पहुंच गए, बरबेश को उठा करके फेंक दिया पालकी में, जी इसको ले जाओ इसके साथ, और इसको नागिन को भी ले जाओ। अब वो तो डकर डकर करके रोने लगी, और ये बेचारे गए नहीं। थोड़े दिन के बाद में श्रीनिवास जी के संग में रहे और उनकी शिक्षा का ऐसा फल हुआ, और नरोत्तम ठाकुर जी वहाँ आते जाते थे, नरोत्तम ठाकुर जी से बड़ी मित्रता हो गई, प्राण के बंधु हो गए। इसलिए नरोत्तम ठाकुर ने उनके संबंध में क्या लिखा है, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, प्रार्थना करें श्रीनिवास जी से, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, गुनो गुरु भाई हैं एक तरह से, वो ये रामचंद्र जी और श्रीनिवास जी, और ये सम रैंक के हैं, किंतु श्रीनिवास जी थे वो कुछ अधिक उम्र में थे। और विद्वान ऐसे जो भागवत पाठ करें ना तो राधा कृष्ण तक तक लगा करके सुनने के लिए बैठ जाएं, जैसे कि वो हमारे सूरदास जी बिना बजा रहे हैं, अंधे सूरदास, और कृष्ण मानो ऐसे सुन रहे हो। ऐसे जब ये प्रवचन करते थे भागवत के ऊपर में, तो राधा कृष्ण दोनों सुनने के लिए वहां पर पहुंच जाते, पधार जाते। और श्रोताओं में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि प्रेम से पिघल करके द्रवित नहीं हो जाता, ऐसे सुंदर पाठ करते। सिद्धांत विधि संस्कृत के विद्वान और राग रागिनी के आचार्य, इन तीनों ने नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और
श्यामानंद
प्रभु, एक गड़ानहाटी राग, एक
नरोत्तम ठाकुर गड़ानहाटी,
और इन दोनों का एक एक
श्यामानंद प्रभु रेनेटी
रेनेटी
आचार्य मनोहर शाही
और मनोहर शाही, तीन तरह के सूर नए नए निकले। पहले ध्रुपद धमार अवरोह अवरोह के साथ में ये सब चलता था। इन लोगों ने उसको सरल और मधुर होकर के माँ प्रभु जी का यह प्रेम धन प्रचार करने के लिए इस रूप में प्रचार किया। अभी नवदीप इत्यादि है यहाँ पर, श्रीनिवास आचार्य का ये सब प्रधान है, और उधर में आसाम मणिपुर में गड़ानहाटी, और मनोहर शाही मेदिनीपुर, और इधर में जगन्नाथपुरी इत्यादि क्षेत्रों में उड़ीसा में वो सब श्यामानंद प्रभु जी के ये सब में प्रचलित है, तीनों अद्भुत। तो ये इनको, इन दोनों से उम्र में अधिक श्रीनिवास जी थे, उनके शिष्य को अपना गुरु भाई मानते हैं। तो उनसे कह रहे हैं जैसे हे श्रीनिवास आचार्य जी, इनका संग मुझे दीजिए, जो मैं सब समय इनके साथ में रह करके भजन कर सकूं। ऐसे सिद्ध महात्मा रामचंद्र जी थे कि श्रीनिवास आचार्य एक बार ध्यानस्थ हो गए, और ऐसे ध्यानस्थ हो गए राधा कृष्ण के लीला का स्मरण करने लगे कि करते करते से कि शरीर की शुद्ध बुद्धि खो गए और वृंदावन में पहुंच गए अपने सिद्ध स्वरूप से सखी के रूप में, और वहां उनके साथ में सेवा में नियुक्त हो गए। एक दिन हो गया, दूसरा दिन गया, तीसरा चौथा, नरोत्तम ठाकुर को और इनको कृष्ण रामचंद्र जी को खबर दी गई, दौड़े हुए लोग आए और उसको कहा हमारे रामचंद्र जी ने, जब तक कि मुझे होश ना आ जाए तब तक हम दोनों की ये शरीर को तुम लोग रक्षा करना। ये कहकर के वहीं पर पास में आसन लगा करके और ध्यानस्थ होकर के बैठ गए, और लीला स्मरण करते 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 गुरु जी के पास में ही गुरु सखी उनके साथ साथ में ये भी चले आए, और वृंदावन में केसी घाट के पास में उसमें लीला चल रही, उस समय कमल के फूलों से भरी हुई थी यमुना, उसमें परस्पर कीड़ा कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उछाल रहे हैं, वो उनको हराएं इनको हराएं, कृष्ण पानी में डूब करके उनके चरणों को पकड़ते हैं, ये सब लीला हो रही। लीला होते होते राधा जी के नक बेसर, नाक में जो बेसर लवंग होती है वो कहीं खो गई। सब सखियां खोज रही हैं, मिल नहीं रहे। इधर में प्राकृतिक विचार से, काल के विचार से 4-5 दिन हो गए, श्रीनिवास उसी लीला में चले गए थे, इसलिए 4-5 दिन वहाँ रह गए, तब ये अब गए, और उस लीला में गोपी भाव से तब वहाँ पर खोजते खोजते गुरु जी को गए जहाँ पर लीला हो रही थी, और ये भी खोजने लगे। ये सबसे छोटी उम्र की थे, खोजते खोजते बाई चांस वह लवंग इनके हाथों में आई, राधा जी की नकबेसर। उन्होंने अपने गुरु रूपी सखी श्रीवास जी को, श्रीनिवास जी के हाथों में इसको दिया, वो पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने रूपमंजरी जी को दिया, रूपमंजरी ने विशाखा जी के हाथों में दिया, वो आनंदित होकर के ललिता जी के हाथों में दे दिया, और ललिता जी इसको पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने राधा जी को ये कानों में नाक में लेकर के अपने हाथों से पहनाया। राधा जी पूछ रही, यही कहाँ मिली, कैसे मिली? कोई एक नई सखी आई है, उसने ढूंढा, बुलाओ तो उसे, तो उसे बुला करके ले। राधा जी ने अपने कर कमल उसके सिर पर रख दिया। वाह, कहाँ तुमको मिला? तो उस कमल की डंडी में कहीं छिप गई थी, कमल के फूल निकल रहे हैं ना, तो जहाँ पर वो कमल कीचड़ से निकल के ऊपर आया, उसी की जड़ में कहीं वो था, मिल नहीं रहा था, हमको यहाँ से मिल। बड़ी प्रसन्न भई, अप्रसन्न होकर के उनके ऊपर करुणा करके और उसके ऊपर में अपने हाथ रख दिए और उसको अपनी सखी के रूप में, पाल्य दासी के रूप में उसे ग्रहण किया। इसके बाद में लीला समाप्त हो गई। समाप्त हो तो गुरु जी के साथ में शरीर में उनके प्राण आ गए और आकर के कुछ दिनों के बाद में तब आंख खुला तो देखे। सब लोग चकित हैं, जैसे ये 7 दिन तक कैसे रहे। इस तरह से ये रामचंद्र जी थे सिद्ध महात्मा। महाप्रभु जी के गण भी जितने हैं, कोई कोई चमत्कार दिखाने, कोई अधिक चमत्कार नहीं दिखाता। क्यों? चैतन्य महाप्रभु भी नहीं चमत्कार उतना दिखलाया। रूप सनातन ने कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार दिखलाने से भक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए कभी भी चमत्कार देख करके तुम लोग अधिक मोहित मत होना। हम लोगों के गुरु जी का भी यही विचार था, चमत्कार में जाने से भक्ति नष्ट हो जाएगी और तुम लोग समझ नहीं सकते, इसलिए चमत्कार की तरफ में मत जाना, खूब सीधा साधा साधन भजन करना, उनके बातों को बतलाए हुई बातों पर चल करके वैधि मार्ग से भजन करते 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 हम लोग अंत में रगांगा के तरफ में यदि हम लोगों का परम सौभाग्य होगा तो हम लोगों को कुछ लोभ होगा, उस समय जैसा उचित होगा उसे हम साधन भजन करेंगे। नरोत्तम ठाकुर पदों की भी रचना करते थे, इनके छोटे भाई तो सिद्ध हस्त थे और काली के उपासक थे, उनका नाम गोविंद कविराज था, बड़े सुंदर सुंदर पद लिखते थे। श्रीवास इन्होंने अपने भाई को कहा कि तू क्या करता है, मर रहा है, तू काली का क्या भजन कर रहा है, तो उनकी मूल जो ईश्वरी श्रीमती राधिका और कृष्ण का भजन क्यों नहीं करता। उनको रुचि नहीं हुई, उनकी मैया ने उनको समझाया, इनके मैया परम भक्त थी, ये पुरंदर मिश्र के, पुरंदर या किसके ये लड़के थे, ये लोग 3 भाई थे, प्रसिद्ध भक्त हैं महाप्रभु के, ये लोग उन्होंने बहुत समझाया किंतु उनके समझ में नहीं आया। कहा जी हाँ हाँ करूंगा करूंगा, किंतु करते नहीं। एक बार बड़ी जोर से बीमार पड़े, ऐसे बीमार पड़े कि अब किसी प्रकार से अच्छे नहीं, मरने का एकदम न बाता। श्री निवास जी कहा अब तो तू मर ही रहा है, एक बात का
रामचंद्र को बता।
रामचंद्र जी ने कहा तुम मर तो रहा है, तुम हमारे साथ में चलो, अभी भी किसी प्रकार से तुमको हम उठा करके ले चलते हैं और श्रीनिवास जी के चरणों में आत्मसमर्पण करो,
दीक्षा दिलवा देते,
फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। दीक्षा के लिए कोई भी वैष्णव जोर नहीं डालते, कभी भी नहीं करते, इच्छा हो तो लेना, न तो मत लेना, तुम चलो। उनको ले गए और उनके चरणों में इन्होंने डाल दिया, उनको उनके चरणों में डालते ही उनके मने दया से पिघल गए, उसके सिर पर हाथ उन्होंने, अरे तुम बहुत इतना कष्ट भोग रहा है तो जल्दी से ठीक हो जाए, बस इतना कहना था। उसी समय उनको कुछ रिलीफ मालूम हुआ और एकदम थोड़े दिन में, 2-1 दिनों में ही एकदम ठीक हो गए। बस उनके चरणों में जाकर के फिर से प्रार्थना करके हरिनाम दीक्षा इत्यादि लिखा और तब से सबसे पहला उन्होंने ये लिखा भक्त जीवन का पहला, भजहु रे मनुष्य नंदन नंदन अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ
मानव जन्म सत्संगी तरह
शीत आतप बात वरिषण
यदि न जाम
जागिर जाइरे
जागिरे विफल से बिनु
कृपा न दुर्जन
चपल सुख लब
लालिरे। इसके बाद में
एधन
जौवन पुत्र परिजन आछे परति तीरे। अरे ये धन जौवन पुत्र परिवार आज एक धूप के समान आया, और उस धूप को जाते हुए कितना समय लगता है, क्षण में धूप पलक में छाया हो जाता है। ऐसे ये जीवन आता और जाता रहता है, स्त्री पुत्र परिवार धन भी आता है और मैल की भांति एक सेकंड में चला जाता है। बुद्धिमान पुरुष इस पर विश्वास न करेंगे। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे
पूजन सखी जन
आत्मनिवेदन
गोविंद दास भी ला।
ये पद लिखा श्री और ये भेजा गया जीव गोस्वामी के यहाँ। जीव गोस्वामी पढ़कर के बड़े आनंदित हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कविता ऐसे ही सुंदर से सुंदर प्रतिफलित। इसके बाद में उन्होंने महाप्रभु जी के और राधा कृष्ण के अष्टकालीन लीला पदों का उन्होंने गायन किया, बहुत रस भरी। ये रामचंद्र कविराज भी ऐसे पद लिखते थे, बड़े कवि भी थे, भक्त भी थे, रसिक भी थे, सिद्ध महात्मा भी थे। इसके बाद में जयदेव गोस्वामी का आज ही के दिन में तिरुभाव या क्या हुआ, तिरुभाव ही होगा या विभाव, इनके संबंध में उन्हें बतलाया है, अगले दिन बतलाए हैं, आज यही तक रहे क्योंकि रात हो गई, जाने में लोगों की असुविधा। वंशा कल पति चान ये सब
जाचे निपत्त
ये श्लोक हम लोग अनुशीलन कर चुके हैं। चरण फली को लेने के लिए बहुत दूर से बंधन सनातन गोस्वामी और बेरू गीत से 10-21-9 से रखते हैं। वंदे नंद वर्ष पति स्त्रीणा ये है ब्रह्म गीत के बाद 47 अध्याय और फिर वहाँ से 31 अध्याय में ले जाकर के उनकी महिमा बतला रहे हैं। गुप्त किमाचरदयम कुशल मदेन दामोदरा थर सुधाम की गोली जाना भूमते स्वयं जौ वशिष्ठ संप्रधन स्वतचो अश्रु मोचु स्तरो कृष्ण गोचारण करने के लिए चले गए हैं और गोपियां झुंड के झुंड अपने स्वजातीय गोपियों के साथ में एक एक दल में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर यह कह रहे हैं सनातन गोस्वामी कि ये श्रीमती जी की ही उक्ति है, राधा जी की ये उक्ति है, राधा जी स्वयं कह रहे हैं गोप्य किम आचर अयम कुशलस मदे। साधारण इसका अर्थ यह होगा कि सखियों न जाने इस नीरस कठोर अचैतन्य
अचैतन्य नीरस कठोर इस वेणु की इस बांस की बांस के टुकड़े में न जाने कैसे ये तपस्या की। आज वह वेणु एकमात्र जिसके अधिकारी गोपियां हैं कृष्ण के अदरामृत का उनके होठों पर सब समय विराजमान रहता, सब समय को वेणु पुरुष होकर के भी पूजा, न जाने कैसी इसने तपस्या पूर्व जन्मी की। एकाकी ही वो पी रहा है और इसके पूर्वज और इसके वंश वाले लोग माता और पिता के समान, जब ये कृष्ण इतना सौभाग्य पाता है तो मानो नदियां आनंद से भर जाती हैं, वो पुलकित हो जाती हैं। कैसे समझा कि उस नदियों में कमल के फूल खिल जाते हैं, इसने मालूम होगा जो खूब आनंदित है प्रसन्न हो। क्यों? आज हमारे वंश में एक सुपुत्र उत्पन्न हुआ जो इतना भाग्यशाली, जिसको विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी किसी को जितना सौभाग्य प्राप्त नहीं है, और इसको प्राप्त कर लिया। पर जैसे नदियों से और बांस का क्या संबंध, क्या संबंध है?
उनके पानी से उनको रस मिला, ऐसे पालित पोषित हुआ।
वो कहते हैं कि उन्होंने दूध पिलाया है इसे, दूध पिला करके बड़ा किया, इन्हीं के दूध पी करके स्तन से पी करके और इतना बड़ा हुआ, और उसको सौभाग्य जब हुआ तो समझती कि हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया जब कृष्ण के पदरों का रस संपूर्ण रूप से ये पी लेता है, बस वो गदगद हो जाती है और उसके कमल के बहानों माने अपनी प्रसन्नता जाहिर कर। किसी का लड़का गवर्नर हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति बन जाए, वो कितने आनंदित हैं, उससे भी बड़े आनंदित होते हैं इसका बेटा खूब भगवत भक्त है, उससे बढ़कर के और कोई आनंद की चीज नहीं। किंतु इस जगत में साधारण लोग दुख करेंगे जो उसका बेटा भक्त होकर के घर से चला गया, यहाँ दुख होगा। किसी की लड़की ऐसी हो जाए जो भगवान का भजन करते हुए मीरा बन जाए तो उसके घर वाले बड़े दुखित हो जाए। तो उस राष्ट्रपति होने की अपेक्षा भी, राष्ट्रपति तो 5 वर्ष के लिए, और भगवत भक्त यदि उच्च कोटि का हो जाए और वो जो कृष्ण जिसका आदर करते हैं सोते हैं तो अंक में लेकर के सोते हैं, सब समय अपने अंक में रखते हैं, मुख पर रखते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा कोई भगवत भक्त हो जाए जिसके फूल में तुमको गर्व होता है आनंद, और उसका पिता यदि हो तो पिता क्या करेगा, या पिता के पिता के पिता, बाज आज हमारा कुल धन्य हो जाए, हमारे कुल में ऐसा भक्त हो
जाए।
तो यहाँ पर इनका पिता कौन?
बांस, नदी, नदी,
बड़ा बड़ा
नदी, नदी,
नदी,
वृक्ष हुए पिता,
और वृक्ष जितने हैं
ये सब पिता हुए।
एक बांस है ना, तो बांस नहीं तो बांस का बड़ा भैया कौन है?
बड़े बड़े पेड़
बट है, पीपल है, ये सब इसके बड़े भैया हैं। तो वो सब भाई के लड़के को अपना लड़का मान रहे हैं, और मान करके ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके घर में कोई संतान नहीं थी और संतान पैदा हुई तो भगवत भक्त, और ऐसा जो कृष्ण कृष्ण से बड़ी मिताली, और उसके सौभाग्य को देख करके ये बड़ी प्रसन्न प्रसन्न हो रहे। तो जब ऐसा जानते हैं वृक्ष लोग, जब हमारे छोटे भाई का ऐसा संतान जी कृष्ण को इतना प्यारा है, तो उनके आंख में आंसू आनंद के भर जाते हैं। इसलिए पीपल, नीम, कदम्ब, पीलू, ये सब बड़े बड़े आम, आम में सबसे अधिक मधु होता है, सबसे अधिक आम है। तो ये सब इनमें से मधु झरने लगता है, बूंद के बूंद टपकने लगते हैं। इसलिए आज हमारे कुल में ऐसा उत्पन्न हुआ। कौन कह रहा है ऐसा? कौन कह रहा है? ये कह रहा है, कह रही है राधा, सचमुच में वृक्ष रो रहे हैं, सचमुच में उसी के लिए कमल में फूलते हैं। उसके पहले क्या कमल नदियों में नहीं फूलते थे, और वृक्षों में क्या मधु नहीं होते, नहीं झरता था कृष्ण लीला से पहले? तो ये जो कर रही है, ये कह रही है, ये उत्प्रेक्षा कर रही, आरोप कर रही। कौन?
राधा जी, गोपी।
जाती रही भावना जैसी हरि मूरत देखा तिन तैसे। राधा जी को कृष्ण के प्रति प्रीति है, और सबसे अधिक सौभाग्य ये सबका जो इसके लिए कह रहे हैं, ये राधा जी को है सबसे अधिक सौभाग्य। और इनको ही यदि थोड़ा सा उसमें कोई ले ले तो उनको ईर्ष्या होती है। वो नहीं चाहते हैं कि इसमें से कोई भी थोड़ा सा भी अंश पार कोई दूसरा ले। इसलिए निर्जीव वस्तु में भी वो सजीव की कल्पना करके और उसमें वो भाव देख करके उससे ईर्ष्या करते हैं। अपात्र में भी यही उन्नत प्रेम का ये लक्षण।